मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 30 अप्रैल 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों सच पूछे तो कल से ही दिल थोड़ा सा गमगीन सा है, उदास सा है, पता नहीं क्यों अंदर से खाली खालीपन सा महसूस हो रहा है। पता नहीं क्यों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि रीजन तो मालूम है लेकिन ऐसा नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो खालीपन है एक ऐसे शख्स के बारे में खालीपन है जो सच में रिलेशन के स्तर पर तो कहीं कुछ लगता ही नहीं था, इसके बावजूद लग रहा है कि वह क्या नहीं था। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैं किस शख्स के बारे में बात कर रहा हूं। पहली बात तो यह कि मैं आज अपने विषय को डाइवर्ट कर रहा हूं और इसके लिए आप सबसे अनुमति चाहता हूं, क्षमा याचना के सहित। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग एक पर्टिकुलर विषय पर बात कर रहे थे दोस्तों, और आज उस विषय पर मेरा जो मन है, मेरी जो आत्मा है, ब्रेक लेने के लिए मुझे बाध्य कर रही है और वह बार बार मुझे यह बात कह रही है कि नहीं, आज मुझे अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उस शख्स को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए जो सच पूछिए तो हमारा न होकर भी हमारा था। हमारे बीच वो नहीं रहता था लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच से उठ करके वो कहीं चला गया है और ऐसी जगह चला गया है जहां से फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। वो हमारे अंदर मौजूद रहता था और हमारे अंदर मौजूद रहते रहते अचानक पता लगा कि वो कहीं गायब हो गया है, अदृश्य हो गया है, कोई जादुई शक्ति उसे हमेशा हमेशा के लिए लेकर कहीं चल गई है और हम अपने अंदर उसके चले जाने के खालीपन को महसूस कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं इरफान साहब के बारे में कर रहा हूं। इरफान साहब जो 53 इयर्स की केवल छोटी सी उम्र में हम सब के बीच स्मृति की इतनी बड़ी जायदाद छोड़ कर गए हैं। दोस्तों अमरत्व क्या होता है, अमर होना क्या होता है, शरीर अमर नहीं होता। जब राम और कृष्ण अमर नहीं हुए, जो शरीर में आए हैं वे गए, तो फिर हम सब तो बहुत ही सामान्य से मनुष्य हैं। लेकिन राम कृष्ण मोहम्मद साहब और जीसस क्राइस्ट और गुरु नानक देव और ये सब अमर क्यों है, क्योंकि हमारी ये स्मृतियों में मौजूद है, यही तो अमरता है। तो कोई स्मृतियों में मौजूद होता कैसे है, क्यों कुछ हमारा नहीं लगने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच का ही है और वह हमारा है। आखिर में ऐसी शख्सियत में वैसे कौन सी विशेषता होती है, कौन से गुण होते हैं जो सच में वो हमारे अंदर समा जाता है, जैसे कि इरफान साहब। मुझे लगता है कि जो बात मैं महसूस कर रहा हूं, जिन भावनाओं के आवेश में मैं हूं, और सच पूछे तो मैडम है और हमारा पूरा परिवार है, हम लोग जब इनके बारे में बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी के जाने का कोई मातम मना रहे हूं। मुझे आश्चर्य हुआ कि यार ऐसा क्यों है, हम कभी उनसे मिले नहीं, हमको उनसे कोई लाभ नहीं होता था, कोई लेना देना नहीं था। उनकी कुछ फिल्में देखते थे, वो फिल्में हमें अच्छी लगती थी, हम उन फिल्मों को सराहते थे और ये पता लगता था कि इरफान साहब की फिल्म है तो प्लान करते थे कि नहीं, चूंकि इरफान साहब की फिल्म है तो ये फिल्म हमें देखने जाना चाहिए। हालांकि उनके फिल्मों में कोई एक्शन नहीं होते थे, कोई बहुत ज्यादा ऐसी कहानियां नहीं होती थी कि आपको जो बांध ले, इसके बावजूद वो बांधते थे, यानी कि कहानियां नहीं बांधती थी, गीत नहीं बांधते थे, संगीत नहीं बांधते थे, कोई नहीं बांधता था, तो कौन बांधता था, सिर्फ इरफान साहब की मौजूदगी। और सच में क्या किसी आदमी का व्यक्तित्व या किसी कलाकार का व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो सकता है, इतना चुंबकीय हो सकता है कि वह 2-4-5 लोगों को नहीं, अपने परिचितों को नहीं, बल्कि अपरिचितों को भी इस कदर बांध ले कि आज उसके न जाने का अफसोस केवल मानसिक स्तर पर नहीं बल्कि भावना के स्तर पर पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। सच पूछिए तो उनके जानने वाले लोग जो पूरी दुनिया में छाए हुए होंगे वे भी मना रहे होंगे। तो दोस्तों आखिर में ऐसी क्या बात थी उनमें, मुझे लगता है कि इन सब पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो इरफान जैसे जो व्यक्तित्व हैं ये जीते जाते मोटिवेशन के आप कह लीजिए कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, जो भी आप कहें, यानी कि ये अपने जीवन के द्वारा हमें संदेश देते हैं, क्योंकि ये धार्मिक स्थल क्या है, हमें संदेश देते हैं। जब आप मस्जिद को देखते हैं तो गर्दन झुक जाती है। वो हमें पवित्रता का संदेश देते हैं, मानवता का संदेश देते हैं। गिरजाघर के साथ यही होता है, सभी मंदिरों के साथ यही होता है। देखते हैं हमारा गर्दन जो, हमारी गर्दन जो है नतमस्तक हो जाती है। ये वो लोग हैं जो अपने जीवन के द्वारा संदेश देते हैं। ये बोलने वाले लोग नहीं हैं, ये करने वाले लोग हैं। तभी तो जब इरफान साहब को कहा गया कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, अब आप काम मत कीजिए, तो उनका क्या कहना था? उन्होंने कहा कि भैया जिंदा रहने के लिए मुझे काम करने दो, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। आप सोच करके देखें इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है। और ये बोलकर संदेश नहीं दे रहे हैं, ये उपदेशक नहीं है, ये बुद्धिजीवी नहीं है, ये कर्म योगी है। कर्म करते हैं आप, उनके कर्मों से अगर संदेश ले सकते हैं तो आप मोटिवेट हो जाइए, और नहीं ले सकते हैं तो ये हमारी अपनी स्थितियां हैं, हमारी अपनी सीमाएं हैं। सच पूछे तो हमारा अपना नुकसान है। गांधी जी ने यही कहा था सत्य के प्रयोग में, यही कहा है कि माई लाइफ इज माई मैसेज। मुझे अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, किताब लिखने की जरूरत नहीं। मेरे आप इस जीवनी को पढ़ लीजिए, आत्मकथा को पढ़ लीजिए, इसी से संदेश मिल जाएगा। मुझे लगता है कि इरफान साहब जैसे लोग इसी परंपरा के लोग हैं दोस्तों, इसी परंपरा के लोग। तो वो कौन से वे लोग होते हैं जो लोगों के अंदर समा जाते हैं, अंदर समा जाते हैं। मैं खासकर इसी बात पर विचार कर रहा हूं, और विचार करते करते मुझे लगा कि कुछ न कुछ उनमें ऐसा होता है कि हम उनको अपने अंदर पाने लगते हैं, या यूं कह लीजिए कि अपने को उनके अंदर पाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि यार ये इरफान नहीं है, ये मैं खुद हूं। वो जो एक्टिंग कर रहे हैं वो एक्टिंग कर ही नहीं रहे हैं। वो इतना सरल और सहज होता है कि लगता है कि नहीं नहीं वो तो उस जीवन को जी रहे हैं, बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि वो एक्टिंग है। आप देखिए इरफान के जितने भी एक्टिंग्स हैं, आप देखिए कि उसमें कहीं भी आपको अभिनय नहीं मिलेगा। चाहे वो सिस्का बल्ब का एड ही क्यों ना कर रहे हों, इस अंदाज में करते हैं जैसे कि वो तो है, वो तो पार्ट है, लाइफ का पार्ट है, मैं तो ऐसा ही हूं। और जितने भी उनके अभिनय हैं, आप देखिए कि उन अभिनय में आपको सुपरस्टार की छवि नहीं मिलेगी। वो सुपरस्टार नहीं है, क्योंकि जब कोई सुपरस्टार होता है तो वो हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है, उसे हम अपना मानने में हिचक करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो ये है ही नहीं। और चूंकि ये इतना बड़ा आदमी है, हम तो छोटे आदमी है, तो ये हमारा नहीं हो सकता, ना तो हम इसके हो सकते, ना ये हमारा हो सकता। तो जब हमारी भावना ये होगी, हमारे विचार ये होंगे, तो वो हमारे गहरे उतरेगा कैसे? लेकिन इरफान साहब लोग ऐसा नहीं करते। उनकी चाहे आप भाषा देखिए, उनकी चाहे आप चाल ढाल देख लीजिए, उनकी चाहे आप पोशाक देख लीजिए, उनके चाहे आप बोलने का अंदाज देख लीजिए, उनकी चाहे आप मुस्कुराहट देख लीजिए, चाहे आप उनकी आंखों की भाषाओं को देख लीजिए। कभी ध्यान दीजिए उनकी भाषाओं को, आंखों की भाषाओं को, मैं बोलने की भाषा नहीं कह रहा, आंखों की भाषाओं को देख लीजिए। उसमें लगेगा कि यार हर जगह हम ही हम हैं, हर जगह हम अपनी छाया पाते हैं। और वो जो डायलॉग भी बोलते हैं, वो डायलॉग ताली पिटाऊ डायलॉग नहीं होते जिनको सुनकर के आप तालियां पीटते हैं। वो डायलॉग ऐसे होते हैं जो आपके और हमारे हृदय के अंदर उतर जाते हैं, वो हमें छूते हैं, छूने के बाद वो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, और जब हम सोचते हैं तो फिर हमें इस बात के लिए भी मजबूर करते हैं कि हम उसमें ढलें। तो जाने जो भी शख्सियत जाने अनजाने में हमें इस तरह प्रभावित कर रही हो, तो दोस्तों आपको नहीं लगता कि वो किस तरीके से हमारे एक एक रोम में समा चुकी है वो शख्सियत, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से? दोस्तों ये एक्टिंग का कमाल नहीं है, एक्टिंग का कमाल नहीं है, सच पूछिए तो ये जीवन का कमाल है। यहां क्वांटम फिजिक्स काम करता है, क्वांटम फिजिक्स। अनजाने में ही होती सब चीजें चली जाती हैं, और वह अनजाने में इसलिए होती चली जाती है क्योंकि आप हइए हैं, आप जो कर रहे हैं और आप जो हैं उसमें कोई दूरी नहीं है, वो दोनों मिलकर एक हो गए, या तो अनजाने में एक हो गए या जानबूझकर के आपने एक कर दिया है। अगर जानबूझकर के भी एक कर दिया है तो बड़ी ईमानदारी के साथ एक किया है, उसमें कहीं कोई कृत्रिमता नहीं है, बनावटीपन नहीं है, दिखावा नहीं है, दोनों मिलकर एकदम एक हो गए हैं। और जब वो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो ये दोनों मिलकर जो एक हो गए हैं, ये फिर दूसरों से मिल मिल करके एक होते चले जाते हैं, और वो जो एक छोटा सा व्यक्तित्व था वो धीरे धीरे विराट व्यक्तित्व में तब्दील होता चला जाता है। और सच पूछिए तो इरफान साहब को मैं इसी तरह का एक व्यक्तित्व मानता हूँ। तो दोस्तों ऐसे व्यक्तित्व का चला जाना डेफिनेटली मन के अंदर एक खालीपन पैदा कर जाता है। मैं आप सब की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, प्रीति अग्रवाल की ओर से, अब और अपनी ओर से उस महान शख्सियत को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों, इसी के साथ ही आप सबसे इजाजत भी चाहता हूं। नमस्कार।